समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
कमजोर व्यक्ति तब रुक जाते हैं जब वो थक जाते हैं और आगे नहीं चल पाते, लेकिन एक विजेता तभी रुकता है जब वो विजयी हो जाता है। इसी सुविचार के साथ AIR FM गोल्ड पर दैनिक कार्यक्रम आज सवेरे का आगाज करते हैं। नमस्कार, सुप्रभात। आज सवेरे के कार्यक्रम के साथ एक बार फिर हाजिर हैं लेकर देश दुनिया के अब तक के समाचार और वो सभी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। आज सवेरे के संघ के साथ मैं हूं मुकेश कुमार और मेरे साथ है मेरी सहयोगी सायरा मुश्तबा। सायरा, आपको भी मेरा नमस्कार।
नमस्कार मुकेश, आदाब एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स। एंड मुकेश ने इतनी खूबसूरत लाइंस पढ़ी पॉजिटिव थॉट्स की, तो कुछ एक शेर हमें आपके लाइंस पे याद आ गया कि गिरते हैं शह सवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो यस, अगर आप गिर भी गए हैं तो आप फिर से उठिए। इट्स मंडे मॉर्निंग, द वीक इज टेयरिंग एट यू, सो प्लीज लुक एट इट विद रिन्यूड विगर एंड एनर्जी एंड कॉन्कर ऑल द गोल्स दैट यू आर लुकिंग टू कॉन्कर। एंड ऑन दैट नोट लेट्स स्टार्ट द शो टुडे मुकेश, लेट्स स्टार्ट फर्स्ट विद द हेडलाइंस।
बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में भारतीय सदी के बारे में NDTV के वर्ल्ड समिट 2024 को संबोधित करेंगे। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा है कि वे आज सवेरे 10 बजे इस सम्मेलन को संबोधित करने के लिए उत्सुक हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की विकास यात्रा ने निश्चित रूप से विश्व का ध्यान आकर्षित किया है और युवा शक्ति देश को नई ऊंचाइयों पर ले जा रही है।
न्यूली इलेक्टेड MLAs ऑफ द J&K लेजिस्लेटिव असेंबली विल बी स्वोन इन श्रीनगर टुडे। Pro Tem Speaker Mubarak Gul will administer the oath to the MLAs, which includes 51 first-time members. The oath ceremony will take place at 2 p.m. Shagun Parihar of the BJP is the youngest legislator at 29, while National Conference's veteran MLA from Chhar-e-Sharif Abdul Rahim Rathair is the oldest at 80. Rathair and party colleague Ali Mohammed Sagar are the only two people to have been elected to the assembly for a record 7 terms. While Sagar has been a member of the Legislative Assembly since 1983, Rathair started his long stint as a legislator in the year 1977.
झारखंड में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सहयोगी ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन ने राज्य में विधानसभा चुनाव के लिए 8 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। पार्टी प्रमुख सुदेश कुमार महतो सिल्ली विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे, जबकि वरिष्ठ नेता लंबोदर महतो गोमिया विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाए गए हैं। ये निर्णय रांची में पार्टी संसदीय बोर्ड की बैठक में लिया गया। NDA के सीट बंटवारे के फॉर्मूले के अनुसार आज 10 सीटों पर जनता दल यूनाइटेड 2 और चिराग पासवान के नेतृत्व वाली LJP 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी। शेष 68 सीटों पर भाजपा उम्मीदवार उतारेगी। 81 सदस्यीय विधानसभा के लिए 2 चरणों में 13 और 20 नवंबर को मतदान होगा। वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी।
The Employees Provident Fund Organization or EPFO has added 18,53,000 net members in the month of August this year. The Labour and Employment Ministry said that around 9,30,000 new members have enrolled during the month. Out of the total new members, around 2.53 lakhs are female members.
जम्मू कश्मीर में गांदरबल जिले के गगनगीर क्षेत्र में निजी कंपनी के श्रमिक शिविर पर आतंकी हमले में 6 मजदूर मारे गए हैं और 4 घायल हो गए हैं। घायलों को कंगन के उप जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। गंभीर रूप से घायलों को बाद में श्रीनगर के अस्पताल में भेज दिया गया। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने आम नागरिकों पर आतंकी हमले को घृणित और कायरतापूर्ण बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि इस जघन्य हमले के जिम्मेदार लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। श्री शाह ने मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भी हमले की निंदा की है।
And well, in the Women's T20 Cricket World Cup, New Zealand scripted history as they clinched their maiden Women's T20 World Cup title after beating South Africa by 32 runs at the Dubai International Cricket Stadium in Dubai last night. Chasing a target of 159 runs set by New Zealand, South Africa made 126 runs for the loss of 9 wickets in the stipulated 20 overs.
और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू ने अपने देश में भारत का एकीकृत भुगतान इंटरफेस यानी UPI शुरू करने का निर्णय लिया है। राष्ट्रपति कार्यालय ने कहा कि मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर यह निर्णय लिया गया। और श्रोताओं, अब आज सवेरे कार्यक्रम में वक्त है प्रमुख महानगरों से जुड़ी खबरें जानने का। तो सबसे पहले
चेन्नई से शुरुआत करते हैं। वेल मुकेश, आजकल कहते नहीं है कि एआई का दौर है, एवरीथिंग इज यू नो बीइंग डिक्टेटेड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो इन चेन्नई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन नाउ आंसर अ क्वेश्चन दैट इवन एक्सपीरियंस्ड ट्रांसप्लांट सर्जन्स हैवंट बीन एबल टू फॉर अ लॉन्ग टाइम। The UK-based University Hospitals Coventry and Warwickshire NHS Trust announced that it has successfully developed Organ Predict, which is an open-source web application through international collaborations with Coventry University and other organizations, including Chennai-based NGO Mohan Foundation. Two AI-based algorithms developed using transplant databases from the US and UK, one each for living and deceased donors. These algorithms can help doctors and patients identify the right recipient for every kidney they transplant. The prediction model can also be used in the national allocation schemes for the paired kidney exchange program, where incompatible donor-recipient pairs swap kidneys to enable successful transplant. I think that's going to be a very, very game-changing thing in medical field. And commendable ki artificial intelligence kya kuch kar rahi hai.
Bilkul.
Moving on to Bengaluru, a 10-member delegation led by jurist and vice president of Heidelberg University from Germany, Professor Dr. Mark Philippe Weller, is visiting Bengaluru on a 3-day visit. He will visit the National Institute of Mental Health and Neurosciences on NIMHANS in Bengaluru today. The German consulate in Bengaluru has organized the visit with a mission to explore opportunities that can foster scientific partnerships and set up Indo-German projects that mutually benefit both the countries. And now moving on to Hyderabad in Telangana, all arrangements are in place for conducting Group 1 exams from today till the 27th of this month. The Telangana State Public Service Commission or TGSPSC informed that over 31,000 candidates are expected to write the exams, which will be held at 46 centres from 2:30 PM to 5 PM in the cities of Hyderabad, Rangareddy and Medchal Malkajgiri districts. The state government has appointed special staffers to check the biometrics of all Group 1 mains candidates. So, well, Mukesh, this was the latest that I had from these three southern cities of Chennai, Bengaluru and Hyderabad. What is the latest buzz from Delhi, Mumbai and Kolkata?
जी हाँ, सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की। और दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए राजधानी के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में प्रदूषण के कारण होने वाली बीमारियों के उपचार के लिए एक विशेष क्लिनिक की शुरुआत की गई है। इस क्लिनिक की आज से शुरुआत होगी, ये प्रत्येक सोमवार को संचालित किया जाएगा। दिल्ली में प्रदूषण रोकथाम के उपायों के निरीक्षण के लिए मुख्यमंत्री आतिशी ने कल आनंद विहार बस अड्डे का दौरा किया। आनंद विहार प्रदूषण का प्रमुख केंद्र है। उन्होंने बताया कि इस बस अड्डे और आसपास जो है वहां पर बड़ी संख्या में एंटी स्मॉग गन तैनात की गई हैं। उत्तर रेलवे विकसित भारत विकसित रेलवे के उद्देश्य से रेलवे के स्टेशनों के बुनियादी ढांचे में सुधार करने के लिए कार्य कर रही है। इसी के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई अमृत भारत योजना के अंतर्गत कई रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक अशोक कुमार वर्मा ने बताया कि पुनर्विकसित स्टेशन भारतीय रेलवे का बदलता हुआ स्वरूप दर्शाते हुए मल्टी मॉडल यात्रा और व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र बन जाएंगे। दिल्ली पुलिस ने कल रोहिणी में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के एक विद्यालय के बाहर हुए धमाके के सिलसिले में प्राथमिकी दर्ज की है। विस्फोट की सूचना मिलने पर दिल्ली पुलिस की एक टीम घटनास्थल पर पहुंची, जहां उसे विद्यालय की दीवार क्षतिग्रस्त पाई। और अब बात कर लेते हैं मुंबई के समाचारों की। मुंबई कस्टम अधिकारियों ने छत्रपति शिवाजी महाराज हवाई अड्डे पर बैंकॉक से आए एक यात्री से लगभग 9 किलोग्राम मादक पदार्थ जब्त किया है। इसकी कीमत करीब 8 करोड़ रूपये है। राज्य में विधानसभा चुनावों में पूर्ण पारदर्शिता के लिए मतदान उपकरणों की मिक्सिंग कल मुंबई में की गई। जिला निर्वाचन अधिकारी बृहन मुंबई नगर निगम आयुक्त भूषण गगरानी और विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में मिक्सिंग प्रक्रिया संपन्न की गई। इसमें प्रत्येक मशीन को एक विशिष्ट संख्या दी जाती है। मिक्सिंग प्रक्रिया के बाद राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में सूची तैयार की जाती है। और बात कर लेते हैं कोलकाता शहर के समाचारों की। पश्चिम बंगाल सरकार ने सब्जियों और अन्य वस्तुओं के मूल्यों को नियंत्रण में रखा है। इसके लिए नगर निगम, प्रवर्तन निदेशालय और संबंधित विभाग बाजार की निगरानी कर रहे हैं। सरकार ने बताया कि प्याज, आलू और अन्य सब्जियों तथा फलों की कीमतों में 15-20% तक की कमी आई है। राज्य सरकार के सुफल बांग्ला स्टॉल कोलकाता और अन्य जिलों में कम मूल्य पर सब्जियां बेच रहे हैं। और सायरा वक्त हो चला है आज सवेरे में मौसम का हाल जानने का, तो सबसे पहले दिल्ली की बात करते हैं।
बिल्कुल कीजिए भाई, दिल्ली में मौसम जैसा भी हो लेकिन पोल्यूशन ने तो सबकी जो है कह सकते हैं जान के पीछे पड़ा है।
बिल्कुल, और हवा जो है दम घोटू होती जा रही है और दिन ब दिन प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है। तो राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में आज आसमान तो साफ रहेगा, अधिकतम तापमान 36 डिग्री और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मुंबई में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा या गरज के साथ बौछार पड़ने की संभावना है और अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम 26 डिग्री के सेल्सियस के आसपास रहेगा। और कोलकाता का रुख करें तो आंशिक रूप से वहां भी बादल छाए रहेंगे, न्यूनतम तापमान 24 डिग्री और अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है।
And if you talk about Chennai, Bangalore and Hyderabad, all these three cities are going to have a cloudy sky and some rain is also expected. In Chennai, the temperature will hover between 25 and 33 degrees Celsius, while in Bengaluru, along with thunder showers, the temperature will hover between 20 and 29 degrees Celsius. Hyderabad will also experience some light rain today during the daytime. Temperature in Hyderabad will hover between a minimum of 22 and a maximum of 31 degrees Celsius.
और अब वक्त हो चला है इतिहास के पन्नों को पलटने का और उन घटनाओं पर नजर डालेंगे जो आज के दिन का इतिहास बन गई हैं। आज 21 अक्टूबर है।
यस, ऑन दिस डे इन द ईयर 1577 गुरु रामदास द सिख गुरु एस्टैब्लिश द सिटी ऑफ अमृतसर।
बिल्कुल, 1934 में आज ही के दिन जयप्रकाश नारायण ने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया था और इसके अलावा आजाद हिंद फौज क्या भी आज स्थापना दिवस है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारत को स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से 21 अक्टूबर 1943 को आज ही के दिन यानी आजाद हिंद सरकार की स्थापना की और आजाद हिंद फौज का गठन किया।
ऑन दिस डे 1954 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड फ्रांस साइंड एन अग्रीमेंट फॉर द डी फैक्टो ट्रांसफर ऑफ द फ्रेंच सेटलमेंट ऑफ पॉन्डिचेरी कराईकल माहे टू द इंडियन यूनियन। द मर्जर टुक प्लेस ऑन 1st of November।
बिल्कुल, और फ्रांस की ही बात करते हैं। आज ही के दिन 1945 में फ्रांस में महिलाओं को पहली बार वोट करने का अधिकार मिला था।
एंड ऑन दिस डे इन द ईयर 1990 दूरदर्शन स्टार्टेड द आफ्टरनून न्यूज बुलेटिन दैट हिंदी वाला जाता था 2 बजे और इंग्लिश वाला 3 बजे एंड द ड्यूरेशन ऑफ द बुलेटिन देन वर 7.5 मिनट्स ऑन वीकडेज एंड 5 मिनट्स ऑन संडेज। तो लोगों को जिनको याद होगा तो दे वुड बी थिंकिंग दैट दिस वॉज टुडे इन द ईयर 1990।
और 1951 में आज ही के दिन भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई थी और 2007 में भारतीय मूल के अमरीकी बॉबी जिंदल ने अमरीका के लुसियाना प्रांत के गवर्नर पद पर जीत दर्ज की थी।
एंड ऑन दिस डे 1999 बीआर चोपड़ा द ग्रेट फिल्म मेकर गॉट द दादा साहेब फाल्के अवार्ड।
और 2012 की बात करें तो आज ही के दिन सायना नेहवाल ने डेनमार्क ओपन सुपर सीरीज का खिताब अपने नाम किया था।
And now, Mukesh, we have come to that segment जिसमें हम लोग उन महान हस्तियों का जिक्र करते हैं who either have their death or birth anniversaries or even their birthdays today. और इस फेहरिस्त में सबसे पहला नाम है मुथुस्वामी दीक्षितर। Today is his death anniversary. Mononymously known as Dikshitar, he was not just a South Indian poet but also a singer and veena player and a composer of Indian classical music who is considered one of the musical trinity of Carnatic music. Dikshitar, born in Tiruvarur, is now in the state of Tamil Nadu in India. He was born in a family that is traditionally traced back to Virinicharapuram in the northern boundaries of the state. His compositions, of which around 500 are known and are noted for the elaborate poetic descriptions of Hindu gods and temples and for capturing the essence of the rag through the Vernika or the Veena style, that emphasizes the gamkas, and listeners are probably hearing MS Subbalakshmi rendering one of Dikshitar's compositions. Today is also the death anniversary of Narendra Singh Bedi, a director predominantly of Hindi cinema and also the son of great writer Rajinder Singh Bedi. He is most known for hit movies like Jawani Diwani starring Randhir Kapoor and Jaya Bhadri, Rajesh Khanna starrers Bandhan and Mahachor and also Amitabh Bachchan starrers Benaam and Adalat and comedy film Raffu Chakkar. Narendra Bedi, he received a degree in arts from the University of Mumbai and thereafter started his career by joining the film production team of G.P. Sippy, who later produced Bedi's debut film, Bandhan, starring Rajesh Khanna and Mumtaz. And his films were either in romantic comedy genre, like that of Jawani Diwani, Dil Diwana, Rafu Chakkar, Sanam Teri Qasam, or they were of action genre, like Mahachor, Khote Sikke, and they had music by R.D. Barman. And Mukesh, if you tell me that R.D. Barman ne actually pehla apna best music director ka award jo jeeta tha, wo Sanam Teri Qasam se hi jeeta tha. But hum log ke Jawani Diwani ka bahut khoobsurat ek gaana hai. Let's listen to that.
जाने जा ढूंढता फिर रहा हूँ तुम्हें रात दिन मैं यहाँ से वहाँ मुझको आवाज दो सुन गए हो सनम तुम कहाँ तुम कहाँ
और आज जन्म दिवस है हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता शम्मी कपूर का। हिंदी सिनेमा के 1950 से 60 के दशक में सदाबहार अभिनेता रहे थे शम्मी कपूर, और शम्मी का वास्तविक नाम शमशेर राज कपूर था। अपनी विशिष्ट याहू शैली के कारण बेहद लोकप्रिय रहे हिंदी फिल्मों के पहले सिंगिंग डांसिंग स्टार शम्मी कपूर रंगमंच के जाने माने अदाकार और फिल्म अभिनेता पृथ्वीराज कपूर के दूसरे बेटे थे। शम्मी कपूर का जन्म 21 अक्टूबर 1931 को मुंबई में हुआ था, और शम्मी कपूर ने वर्ष 1953 में फिल्म ज्योति जीवन से अपने अभिनय की शुरुआत की थी। वर्ष 1957 में नासिर हुसैन की फिल्म तुमसा नहीं देखा में अभिनेत्री अमिता के साथ उन्होंने काम किया। वहीं वर्ष 1959 में आई फिल्म दिल दे के देखो में आशा पारेख के साथ नजर आए। तो क्यों ना ये गाना सुना जाए।
बिल्कुल।
दिल तक देखो, दिल तक देखो, दिल तक देखो जी, दिल लेने वालो दिल देना सीखो जी, ओ दिल लेने वालो दिल देना सीखो जी। पूछो 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 परवाने से जरा, धीरे धीरे जलने में कैसा है मजा। पूछो 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 परवाने से जरा, धीरे धीरे जलने में कैसा है मजा। ओ हो हो तुम भी दिल देके जल जाना सीखो जी, आहा हा तुम भी दिल देके जल जाना सीखो जी।
कैसे?
दिल तक देखो, दिल तक देखो, दिल तक देखो जी, दिल लेने वालों दिल देना सीखो जी।
Yes, the Elvis Presley of Indian cinema, Shammi Kapoor is considered one of the greatest and most successful actors in the history of Indian cinema. In a career that spanned over 5 decades, he worked in over 100 films. He was also the recipient of 3 Filmfare Awards, including one for Best Actor. And aapne jaise bataya ki Jeevan Jyoti se unki filmi career ki shuruaat hui, but that film did not do very well at the box office. And in fact, Jeevan Jyoti ke baad unhone bahut si continued box office flops di. But his breakthrough, as you said rightly, Mukesh, that his breakthrough came with Tumsa Nahi Dekha, which attained him the image of a stylish playboy and dancer, and subsequently gained further recognition with Dil Deke Dekho, and he rose to widespread recognition with the romantic blockbuster Jungli, that went on to become one of the most marketable Bollywood stars throughout the 1960s, appearing in a number of highly successful films such as Professor, Dil Tera Deewana, Chinatown, Rajkumar, Kashmir Ki Kali, Janwar, Teesri Manzil, and Evening in Paris, Brahmachari and Prince as well. Aur baat hui hai unki Jungli film ki, to har koi ये रफी की आवाज और शम्मी कपूर की अदाकारी कभी नहीं भूल सकते इन दिस सॉन्ग।
चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे, हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं, हम क्या करें। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, तेरे सीने में भी दिल है, है मेरे भी कुछ अरमान, मुझे पत्थर को न समझो, मैं हूँ आखिर एक इंसान। मेरे सीने में भी दिल है मेरे भी कुछ अरमान, मुझे पत्थर को न समझो, मैं हूँ आखिर एक इंसान। राह मेरी वही जिस पे दुनिया चली, राह मेरी वही जिस पे दुनिया चली, चाहे कोई मुझे जंगली कहे।
और सायरा, आपने शम्मी कपूर को एल्विस प्रेस्ली के रूप में जाना जाता है ये बताया है, और हम अपने श्रोताओं को बताना चाहेंगे उन्होंने चार फिल्मों में आशा पारेख के साथ काम किया था, जिनमें सबसे सफल फिल्म 1966 में बनी तीसरी आंख रही थी। इसके अलावा फिल्म ब्रह्मचारी के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला था। और शम्मी कपूर रुपेले पर्दे पर तब अपने अभिनय की शुरुआत जब उन्होंने की थी जब उनके बड़े भाई राज कपूर के साथ ही देवानंद और दिलीप कुमार छाए हुए थे। निश्चित तौर पर बहुत बड़ा चैलेंज था, बहुत बड़ी मुश्किल थी, लेकिन उन्होंने अपने अभिनय से अपना अलग स्थान बनाया। और पारिवारिक पृष्ठभूमि के होने के बावजूद शम्मी का फिल्म जगत में प्रवेश रेल का डिब्बा में मधुबाला, क्षमा परवाना में सुरैया और हम सब चोर में नलिनी जयवंत के साथ अभिनय करने के बाद शुरू हुआ था। उनकी शुरुआती फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप जरूर रही थीं। उन्होंने 50 के दशक में डकटेल शैली में अपने बाल कटवाकर तुमसा नहीं देखा के साथ खुद को नए लुक में पेश किया। उसके बाद उन्हें सफलता मिलती गई और 1961 में, जैसे कि अभी हमने गाना सुना, जंगली पूरी तरह से सफल हुई और दर्शकों के बीच उनकी अपील सुक्कू सुक्कू, ओ हसीना जुल्फों वाली, आजकल मेरे तेरे प्यार के चर्चे और आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा जैसे गानों से चलती ही थी। तो क्यों ना ये गाना सुना जाए।
ओ हसीना जुल्फों वाले जाने जहाँ, ढूंढती है काफिर आंखें किसका निशान, महफिल महफिल ऐ शमा फिरती हो कहाँ, महफिल महफिल ऐ शमा फिरती हो कहाँ।
वो अनजाना ढूंढती हूँ, वो दीवाना ढूंढती हूँ, जला कर जो छिप गया है वो परवाना ढूंढती हूँ।
What melodious numbers, दिल चाह रहा था कि सुनते ही जाए ये गाने। I'm sure even our listeners would be humming that. And today is also the birthday of Kulbhushan Kharbanda, an actor who works mostly in Hindi and Punjabi films. लेकिन उनका जो सबसे ज्यादा जाना माना रोल रहा है मुकेश, वो सबको याद होगा इन द फिल्म
शान,
शान एज शाकाल।
थोड़ी देर में तुम चारों में से बाकी तीन ये जान जाएंगे कि वो गद्दार कौन है, क्योंकि उसके जिस्म के टुकड़े इस भूखे मगरमच्छ के तेज और नुकीले चबड़ों में होंगे।
Today is also Muzaffar Ali's birthday, and we all know that he made the magnum opus Umrao Jaan, and apart from being a filmmaker, he's also a fashion designer, poet, artist and cultural revivalist, and also a social worker. In fact, recently he has started displaying and holding exhibitions of his marvelous paintings, aur pichle mahine unki jo hai Delhi ki bahut hi prominent gallery mein unki exhibition lagi thi. And if you talk about Muzaffar Ali, so how can we forget this beautiful song from the film Umrao Jaan.
In aankhon ki masti ne mastane hazaron mein, mastane hazaron mein, in aankhon se wabasta, in aankhon se wabasta, afsane
और सारा हिंदी सिनेमा की प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक, पटकथा लेखक और फिल्म निर्माता यशराज चोपड़ा की आज पुण्यतिथि है। यश चोपड़ा को हिंदी सिनेमा का किंग ऑफ रोमांस कहा जाता है। दीवार, कभी कभी, डर, चांदनी, सिलसिला, दिल तो पागल है, वीर जारा जैसी अनेक बेहतरीन और रोमांटिक फिल्में बनाने वाले यश चोपड़ा ने पर्दे पर रोमांस और प्यार को नए आयाम दिए।
That's very true. The king of romance. In fact, the way he portrayed romance and love, I think wo ek shiddat or passion no other director could probably translate it on the celluloid. And even though he started his career by assisting his brother B.R. Chopra, but unhone phir apna ek aisa maqam banaya jo mere khayal se aaj tak koi bhi replace nahi kar paya hai. And agar Yash Chopra ki baat ho rahi hai, to obviously there are so many songs. Ek zakhira hai, but usme se kuch nikal ke liye aap lela hai. Let's start with this song from Silsila.
Sita ha, aa gaye hum, yun hi saath saath chalte, teri baahon mein hai janam, mere jism jahan pighalte.
और सहरा यश चोपड़ा का जन्म 27 सितंबर 1932 को पाकिस्तान के लाहौर में हुआ था। उनके बड़े भाई बी आर चोपड़ा बॉलीवुड के जाने माने निर्माता निर्देशक थे। बड़े भाई की प्रेरणा पर ही उन्होंने भी फिल्मों में अपना हाथ आजमाया। यश चोपड़ा ने अपने भाई के साथ सह निर्देशक के तौर पर काम करना शुरू किया। अपने भाई बी आर चोपड़ा के बैनर तले उन्होंने लगातार 5 फिल्में निर्देशित की। इन फिल्मों में एक ही रास्ता, साधना और नया दौर शामिल है।
Yes, and he also explored very complex issues within the framework of romance. Jaise sabko yaad hoga film Lamhe, in which the daughter falls in love with a man who actually loved her mother. You know, when Sridevi played a double role, to apne aap mein bahut hi ek new aspect tha romance ka, which was very jarring also to some audiences. But nonetheless, it was a beautiful film with beautiful songs. Let's listen to one song.
Kabhi main kahun, कभी तुम कहो कि मैंने तुम्हें ये दिल दे दिया,
कभी मैं सुनूं, कभी तुम सुनो।
यश चोपड़ा ने 1969 में पहली बार अपने भाई के बैनर तले ही बनी फिल्म धूल का फूल का निर्देशन किया। इसके बाद उन्होंने भाई के ही बैनर तले धर्मपुत्र को भी निर्देशित किया। वर्ष 1965 में आई फिल्म वक्त यश चोपड़ा की पहली हिट फिल्म साबित हुई।
Yes, and in 1970 he founded his own production company, the Yash Raj Films, that whose first production was Daag, which was a successful melodrama about polygamy. And his success continued in the 70s with some of Indian cinema's most successful and iconic films like Deewar, and of course many others. Trishul was also one of them. Kabhi Kabhi was one of them. Or in fact, in the later years, jo naye actors aaye, Shah Rukh Khan especially. Shah Rukh Khan, he started his career as a, you know, in negative roles. तो ये फिल्म जो यश चोपड़ा ने डायरेक्ट की थी, जिसमें किरण बिकेम वेरी फेमस। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस ब्यूटीफुल फिल्म डर। एंड क्यों ना इसका एक गाना सुना जाए।
जादू तेरी नजर, खुशबू तेरा बदन, तू हाँ कर या ना कर।
And if you're talking about Yash Chopra, we tried to bring his oeuvre through the years. And last mein jo unki film hum log jiska gana sunne wale hain, wo hai Veer Zara. Let's listen to this beautiful song.
Janam, dekh lo, mit gayi duriyan, main yahan hoon, yahan hoon, yahan hoon, yahan. Kaisi sarhadein, kaisi majbooriyan, main yahan.
तो श्रोताओं, घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि आज का आज सवेरे कार्यक्रम यहीं समाप्त करते हैं। तो अनुमति दें मुकेश कुमार और सायरा मुश्तबा को कार्यक्रम आज सवेरे यहीं समाप्त करने की, लेकिन आप सुनते रहें AIR FM Go.
Stay tuned for coming up. Next is Hindi News Bulletin followed by Morning News in English at 8:15. Thanks for tuning in. Have a great day.
Namaskar.